नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। स्टार्टअप इंडिया के 10 वर्ष पूरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा स्टार्टअप इंडिया मिशन केवल एक दशक में क्रांति बन गया। दिल्ली की अदालत ने लाल किला विस्फोट मामले में 5 आरोपियों को 13 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 77वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर। पहला नमो पुस्तक महोत्सव नई दिल्ली के डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में शुरू और इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला चीन के लिन चुन यी से जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्टार्टअप इंडिया केवल एक योजना नहीं बल्कि इंद्रधनुषी दृष्टि है जो विभिन्न क्षेत्रों को नए अवसरों से जोड़ती है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर स्टार्टअप इंडिया के 10 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया मिशन केवल एक दशक में क्रांति बन गया है।
नेशनल स्टार्टअप डे का ये अवसर, स्टार्टअप फाउंडर्स और इनोवेटर्स का ये समूह मैं अपने सामने नए और विकसित होते भारत का भविष्य देख रहा हूँ। अभी मुझे कुछ स्टार्टअप की दुनिया के लोगों से उनके कुछ अचीवमेंट थे, उनके जो प्रयोग थे उसे देखने का अवसर मिला, कुछ साथियों को सुनने का अवसर मिला, एग्रीकल्चर में काम कर रहे स्टार्टअप, फिनटेक, मोबिलिटी का सेक्टर, हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी का फील्ड। आपके जो आइडियाज है वो सिर्फ मुझे नहीं, हर किसी को इम्प्रेस करने वाला है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत में केवल 4 यूनिकॉर्न थे लेकिन अब इनकी संख्या 125 से अधिक हो गई है। श्री मोदी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को वित्त पोषण देने के मामले में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि लक्षित नीति और वित्तीय सहायता के चलते भारत का डीप टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से विकसित हो रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि आज भारत के 80% स्टार्टअप एआई आधारित हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत डिजाइन आधारित प्रोत्साहन योजना के माध्यम से अब तक 23 स्टार्टअप्स को सहायता दी गई है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि संस्थागत वित्त पोषण के लिए सेमीकॉन इंडिया में $1 अरब के इंडिया डीपटेक अलायंस की घोषणा की गई थी। उन्होंने कहा कि 1,00,000 करोड़ रुपए के कोष वाला अनुसंधान विकास और नवाचार कोष से नवाचार क्षमता बढ़ रही है। इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह ने भी शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम आज वैश्विक मानचित्र पर एक उज्ज्वल स्थान रखता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर सभी युवा उद्यमियों और दिल्लीवासियों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया अभियान ने एक दशक पूरा कर देश को 2,00,000 से अधिक स्टार्टअप के साथ भारत का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान ने देश के नौजवानों को जॉब सीकर की मानसिकता से मुक्त कर आत्मविश्वास से परिपूर्ण जॉब गिवर के रूप में स्थापित किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार ने स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के स्टार्टअप आयोजनों का आकलन कर लगभग 100 स्टार्टअप को सीडिंग राशि प्रदान की है। आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस की प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार युवाओं द्वारा बनाए गए स्टार्टअप्स को शहर के विकास में सही उपयोग में लाएगी। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके द्वारा प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए जो अस्थायी उपाय किए गए थे वे लंबे समय तक निर्णायक नहीं रहे, लेकिन वर्तमान सरकार ने समयबद्धता के साथ उचित कदम उठाए और प्रदूषण नियंत्रण का काम किया। वहीं पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आज इस प्रदर्शनी का उद्देश्य यही था कि देश भर से ऐसे विचार और नवाचार सामने आए जो दिल्ली की जहरीली हवा के खिलाफ ठोस और स्थायी समाधान बन सकें। श्री सिरसा ने कहा कि प्रदूषण के खिलाफ इस युद्ध में नवाचार ही सबसे अचूक हथियार है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अगले 4 वर्ष में राजधानी में 14,000 बसों को अंतिम मील कनेक्टिविटी के लिए उतारा जाएगा। आज दिल्ली सचिवालय में एक बैठक के दौरान श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इस महीने की 31 तारीख तक शहर के 10 प्रमुख मेट्रो स्टेशन पर ई ऑटो, बाइक टैक्सी और फीडर कैब के पायलट एकीकरण को कार्यान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अंतर्गत सार्वजनिक चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग प्वाइंट्स की संख्या को मौजूदा 9,000 से बढ़ाकर 36,000 करने का निर्णय लिया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि राजधानी की प्रमुख सड़कों और गलियारों पर नियमित धूल दमन के लिए 250 वाटर स्प्रिंकलर कम एंटी डस्ट मशीनों को तैनात किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि हरियाली बढ़ाने के लिए दिल्ली रिज क्षेत्र में 35 लाख पेड़ लगाए जाएंगे और 365 एकड़ ब्राउन पार्क क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से राजधानी को स्वच्छ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज तीसरे अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि मकर संक्रांति किसानों का त्योहार है और एक तरह से ये लोग ही इस दिन अपने नए साल की शुरुआत करते हैं। उन्होंने कहा कि इन त्योहारों के माध्यम से संपूर्ण समाज साथ आता है और एक सामूहिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ता है।
मूलतः ये किसानों का उत्सव है और यहाँ से किसान अपने नए साल की शुरुआत करते हैं और कवि कालिदास ने भारत के लिए एक बहुत सुंदर शब्द प्रयोग किया था, उत्सव प्रिय जनाहा। हर ऋतु में, हर सीजन में हमने उत्सवों का आयोजन किया है और उत्सव के माध्यम से पूरे समाज को एकत्रित कर हम आगे बढ़ने की सोच रखने वाले लोग हैं और उत्तरायण उसी का एक हिस्सा है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये वही दिल्ली है जहां हर धागा लोगों को जोड़ता है, हर उड़ान परंपरा से संवाद करती है और हर रंग शहर की साझा पहचान को और गहरा करता है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि आयोजन राजधानी को और अधिक जीवंत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बना रहा है।
पतंग उत्सव हम सबको अपनी भारतीय संस्कृति से, परंपराओं से जोड़ने वाला है। पतंग उत्सव दिल्ली के लिए इस स्वरूप में नया जरूर है, परंतु अपनी गली से, अपने घर से, अपनी छत से पतंग उड़ाने का अनुभव बचपन से ही दिल्ली का हर बालक लेता है और उन्हीं यादों को फिर से संजोने का, सहेजने का काम ये पतंग उत्सव कर रहा है।
ये महोत्सव रविवार तक चलेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली की एक अदालत ने लाल किला विस्फोट मामले में 3 डॉक्टरों और एक उपदेशक सहित 5 आरोपियों को अगले महीने की 13 तारीख तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की याचिका को डॉक्टर अदील राठौर, डॉक्टर शाहीन सईद, डॉक्टर मुजम्मिल गनाई, मौलवी इरफान अहमद वागे और जासिर बिलाल वानी के लिए स्वीकार कर लिया गया। इन्हें 10 नवंबर के विस्फोट से पहले कथित तौर पर आतंकवादी हमलों में सहायता करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस हमले में 15 लोग मारे गए थे। 2 अन्य आरोपी यासिर अहमद डार और नसीर बिलाल मल्ला की न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी गई है। अब तक कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 2 नई पुस्तकों का विमोचन किया। जनरल वी बानो और महात्मा शीर्षक वाली ये पुस्तकें भारत के पहले नमो पुस्तक का महोत्सव में विमोचन किया गया। डॉक्टर सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित पुस्तकों की विशेष प्रदर्शनी लगाई गई है। आज नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 77वें गणतंत्र दिवस परेड का पूर्वाभ्यास हुआ। 26 जनवरी को होने वाले मुख्य कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर है। सशस्त्र और सुरक्षा बलों की टुकड़ियां पूर्वाभ्यास में भाग ले रही हैं। सुरक्षा बलों की ये टुकड़ियां बैंड बाजे के साथ मार्च कर रही हैं। दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने आज नजफगढ़ में नई वाटर मास्टर मशीन के जलावतरण और नजफगढ़ ड्रेन में ड्रेजिंग कार्य का शुभारंभ किया। मीडिया से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि ये बहुउद्देशीय उभयचर मशीन बाढ़ नियंत्रण और प्रदूषण रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
ये मशीन जो हम लेके आए हैं, वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी को ढूंढ रहे हैं ताकि यमुना को जल्दी से जल्दी साफ किया जा सके। बहुत बड़ी ड्रेन है जिसका आज अगर मैं बोलूं कि 70% यमुना को गंदा करने में इसी ड्रेन का योगदान है। तो अभी हमने ये मशीन यहाँ पे लगाई है। इसका फायदा ये है कि 1 घंटे में 600 क्यूबिक मीटर सिल्ट ये अपने प्रेशर से सक करके, पहले उसको काटती भी है फिर उसको सक करके साइड में गड्ढा हमने खोदा है और इसमें एक तो ये थ्रो भी करती है।
श्री सिंह ने कहा कि पहले की मशीनों की तुलना में ये मशीन कई गुना अधिक तेज, प्रभावी और आधुनिक है। दिल्ली के कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने आज कला उद्यमी पुरस्कार कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मिश्रा ने कहा कि बेटियां कला, उद्यमिता और आत्मविश्वास के बल पर अपने सपनों को साकार करने के साथ साथ विकसित दिल्ली के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की बेटियां प्रतिभाशाली, आत्मनिर्भर और नवाचार से परिपूर्ण हैं। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने आज उत्तर पश्चिम दिल्ली के पंजाब खोर में सामुदायिक केंद्र में वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण वितरित किए। श्री सिंह ने वयोश्री योजना के माध्यम से इन उपकरणों का वितरण किया। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग को सम्मान, सुख और सुविधा देना उनकी सरकार का संकल्प है। नई दिल्ली की जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय में कल से माई भारत कश्मीरी यूथ एक्सचेंज कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम वतन को जानो विषय पर आधारित है। इस कार्यक्रम में 130 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इनमें 50 से अधिक छात्राएं शामिल हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत पूर्वोत्तर दिल्ली के अधिकारी दिवाकर भाटी ने बताया कि कार्यक्रम गृह और खेल मंत्रालय द्वारा जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय के साथ मिलकर आयोजित किया जा रहा है। श्री भाटी ने कल से 22 जनवरी तक आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की भी जानकारी दी।
ये जो आज कार्यक्रम जिसमें हम सभी जुड़े हैं, कश्मीरी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम, इसका मुख्य उद्देश्य है कश्मीर के जो हमारे युवा हैं उनका आदान प्रदान कल्चरल हो गया, एकेडमिकल वे में हो गया, किस तरीके से उन युवाओं को हम मुख्य धारा से सरकार की जोड़ सकते हैं, उनके लिए यहाँ पे उनका 6 दिन का कार्यशाला रहेगी जिसमें उनके सेशंस हो गए जो डोमेन एक्सपर्ट के द्वारा दिए जाएंगे, किस किस तरीके से जो फील्ड के जो एक्सपर्ट है, चाहे फिट इंडिया, हिट इंडिया का एक्सपर्ट हो गए, एनडीआरएफ के हमारे एक्सपर्ट हो गए, इन सभी सेशन के साथ साथ उनकी विजिट भी है जो हमारे देश के मुख्य इंस्टीट्यूट है, IIT दिल्ली हो गया, विधानसभा हो गया, कुतुब मीनार हो गया, पीएम म्यूजियम हो गया, ताकि जो हम कल्चर की बात कर रहे हैं उसका एक सही तरीके से आदान प्रदान किया जा सके।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। सरकार आगामी बजट सत्र में बीज अधिनियम 2026 पेश करेगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि कानून का उद्देश्य खराब गुणवत्ता वाले नकली और अनाधिकृत बीजों की बिक्री पर अंकुश लगाना है। उन्होंने कहा कि नया कानून जानकारी की सुविधा भी प्रदान करेगा।
इसमें ट्रेसेबिलिटी का पूरा एक सिस्टम होगा, जो बीज आएंगे वो ये पता चलेगा कि डीलर के पास कहां से आए। एक तो ये होगा कि खराब बीज सिस्टम में आएंगे ही नहीं, और आए तो वो पकड़े जाएंगे और जिसने दिए उसको दंड दिया जा सकेगा, इसकी व्यवस्था की गई है। सीड कंपनी का रजिस्ट्रेशन बाकायदा किया जाएगा, इससे अनाधिकृत रूप से अगर कोई बीज बेचेगा तो वो भी जानकारी तत्काल प्राप्त की जा सकेगी। हाँ, एक बात मैं इसमें कहता हूँ कि परंपरागत बीज जो किसान बोता चला आया है पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे, क्योंकि किसान आपस में भी बीजों का विनिमय करता है।
नई दिल्ली में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला चीनी ताइपे के लिन चुन यी से जारी है। दोनों खिलाड़ी एक एक गेम जीत चुके हैं। कल खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य ने जापान के केंता निशिमोतो को 21-0, 21-10 से हराया था। HS प्रणय और किदांबी श्रीकांत प्रतियोगिता से बाहर हो चुके हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 2 नई पुस्तकों का विमोचन किया। राजधानी दिल्ली में आज धूप खिली रहने के कारण लोगों को भीषण ठंड से राहत मिली। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार कल सवेरे घना कोहरा छाए रहने की आशंका है। कल का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्टार्टअप इंडिया के 10 वर्ष पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्टार्टअप इंडिया मिशन केवल एक दशक में क्रांति बन गया। दिल्ली की एक अदालत ने लाल किला विस्फोट मामले में 5 आरोपियों को 13 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 77वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर। पहला नमो पुस्तक महोत्सव नई दिल्ली के डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में शुरू। और इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला चीन के लिन चुन यी से जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।